Today is Sunday, 26th March 2017. We are in Pudavivak Yatra. We'll be studying the 8th canto, chapter 20, text number 4.
Aaj Ravivar, 26 March 2017, और हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद संख्या 8 अध्याय 20 के श्लोक संख्या 4 पर चर्चा करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नयसत्यत्
नयस्तत्
नयसत्यत्
नयसत्यत् परो धर्मा इति होवाच
भूरियाम्
भूरियाम्
सर्वं
सोडुम्
अमलं
मन्ये
रितिलिका
परम नरम् नय सत्यात् परो धर्मा
इति होवाच भूरियाम्
इति होवाच भूरियाम्
सर्वं सोडुम् अलम्मन्ये
रितेलिका परम नरम् न हि सत्यात् परो धर्मा इति होवाच भूरियम् सर्वं सोडुम् अलम्मन्ये रितेलिका परम नरम्
Don't change the melody, Haribol. Don't change the melody. Sing it, chant it. I'll chant the original melody again. Nahyasat yat paro dharma. Iti hovacha buriyam. Sarvam sodum alammanye.
Sarvam sodum alammanye.
Ritelika param naram.
Ritelika param naram.
Now chant the same melody.
Nahi.
He, indeed.
Nisandeha.
Asatyat. That compulsion to untruthfulness.
Asatyase.
Para. More.
Badkar.
Adharma. Irreligion.
Adharma.
Iti. Thus.
Is prakar.
Uvacha.
Uvacha.
Indeed had spoken.
Sachmuch kaha hai.
Bhu.
Bhu.
Mother. Earth. Mother Earth.
Mata prathvi ne.
Iyam.
Iyam.
This.
Yaha.
Sarvam.
Sarvam.
Everything.
Sarvasya.
Sodum,
sodum,
to bear,
sahan karne ke liye,
alam,
alam,
I am able,
main samarth hoon,
manye,
manye,
although I think,
yadyapi main manta hoon,
rite,
rite,
except,
ke atrit sivai, alika param,
the most heinous liar,
अत्यंत जगन्य झूठा
नराम
नराम
a human being
मनुष्य
translation there's nothing more sinful than untruthfulness this is Bali Maharaj speaking
अनुवाद इस प्रकार है बलि महाराज ने कहा असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है
because of this mother earth once said
इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था
I can bear any heavy thing except a person who is a liar.
मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे व्यक्ति को नहीं.
So let us recite the Guru Parampara Brahmas, please.
Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी.
First I'd like to remind you that in the recitation of Srimad Bhagavatam and other shastra there are certain etiquettes and protocol that are to be observed.
तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवतम के पठन में और इसके उच्चारण में कुछ नियम हैं, कुछ सदाचार हैं.
The presenter or the primary chanter, in this case who is giving a class, presents a particular melody to the mantra.
तो जो वक्ता होते हैं, जो कथा करने वाले हैं, वे एक प्रकार की जो मंत्र का जो रिदम होता है, जो मीटर होता है, उसमें वो गाते हैं.
Now to the shastra in general, there are many, many different melodies can be chanted. For example, to Srimad Bhagavatam, many different melodies are there.
तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर कई प्रकार की melodies हो सकती हैं, कई प्रकार के संगीत से उसे गाया जा सकता है.
But there's an etiquette that you need to be aware of.
लेकिन यह एक सदाचार है कि आप उसके प्रति जागृत हों, आप जागरूक हों कि जो वक्ता जिस मेलोडी में गा रहे हैं उसी में आप भी गाएं.
The etiquette is that you follow the same tune of the mantra as given by presenter. You don't suddenly introduce a different melody. That is not proper etiquette.
तो जिस मेलोडी में, जिस ट्यून में वक्ता ने गाया है, श्लोक का उच्चारण किया है, उसी में आप भी उच्चारण करें, यही सदाचार है.
Doesn't mean that melody is wrong, but just to this verse alone, several different melodies could be chanted to this verse alone.
तो दूसरी जो ट्यून या मेलोडी है वे भी सही हैं, लेकिन इस मंत्र के साथ में, जिस इस मंत्र के साथ में भी कई ट्यून से गाया जा सकता है इसे, लेकिन जिसमें वक्ता गाएं उसी में हमें गाना चाहिए.
So let's read this very important verse again.
तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को वापस पढ़ते हैं.
This is Bali Maharaj speaking.
यहाँ बलि महाराज कह रहे हैं.
He is replying to his guru Shukracharya.
वे अपने गुरु शुक्राचार्य को उत्तर दे रहे हैं.
And Shukracharya has just asked him to withdraw a promise that he just made to Vamanadeva to give 3 steps of land. But Shukracharya is very alarmed. He's saying, no, don't do it, don't do it.
तो शुक्राचार्य, हालांकि बलि महाराज ये वचन दे चुके हैं 3 पग भूमि का वामन देव को, लेकिन शुक्राचार्य अलार्म हो जाते हैं, शुक्राचार्य को पता लगता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, आप वचन मत दो.
Last time we discussed how Shukracharya is a materialistic Brahman.
पिछली कक्षा में हमने यह चर्चा की थी कि किस प्रकार शुक्राचार्य एक भौतिक ब्राह्मण हैं जिनको कुछ लाभ चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए.
Very intelligent, but if one is not guided themselves by a pure devotee and surrendering, at least endeavoring to surrender to that pure acharya, then their siddhanta, their conclusion of shastra becomes, you could say, aborted.
तो हालांकि शुक्राचार्य बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर किसी को एक शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्त की शरणागति में वो ना हो या फिर शरणागति लेने का प्रयास ना कर रहा हो तो उसके जो कंक्लूजन उसकी जो जो उसने कंक्लूजन किए होंगे वे गलत भी हो सकते हैं.
In the days of yore, every single Brahmin was very well learned in the Shastra.
तो पिछले समय में वैदिक समय में हर ब्राह्मण शास्त्रों में बहुत निपुण होते थे.
Of course, Shukracharya is not an ordinary Brahmin, he's a very powerful Brahmin.
तो शुक्राचार्य एक बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण है.
Mystic yogi.
एक योगी हैं जिनके पास कुछ शक्तियां हैं दिव्य.
Definitely not a pure devotee, he's a lord.
लेकिन ये निश्चित रूप से शुद्ध भक्त नहीं है.
But he knows, notice I'm talking in the present tense because Shukracharya is not dead, he's still alive.
तो शुक्राचार्य अभी भी जीवित हैं.
As far as I know.
तो इसलिए वो जानते हैं.
But he resides in a different part of the universe.
लेकिन वे इस ब्रह्मांड के किसी और भाग में रहते हैं, इस भूमंडल पर नहीं.
You may be surprised to learn that everyone sitting here today is more fortunate than such a great soul, such a big yogi as Shukracharya. You all sitting here today are more fortunate than he is.
तो महाराज बता रहे हैं कि हम सब जो इस कक्षा में बैठे हैं वे उस योगी शुक्राचार्य से भी ज्यादा ज्यादा भाग्यशाली हैं.
How many of you know why?
आप में से कौन कौन जानते हैं ऐसा क्यों है? हाथ खड़ा कीजिए.
Not so many.
काफी भाग जानते हैं.
Most of you are householders.
आप में से
so you have not such a very big history of studying shastra.
तो आप में से ज्यादातर भक्त गृहस्थ हैं और आप लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा नहीं किया होगा.
Household life, however, should not be a barrier to studying in Prabhupada's books.
फिर भी गृहस्थ जीवन एक बाधा नहीं बनना चाहिए कि हम प्रभुपाद पुस्तकें नहीं पढ़ सकें, प्रभुपाद की पुस्तकें ना पढ़ सकें.
If you're simply watching television, going to the cinema, going out to five-star hotels, along with, you know, 15 family members, that's not spiritual life.
तो अगर आप अपने परिवार के 15 लोगों के साथ टीवी देखते हैं, सिनेमा जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो यह एक आध्यात्मिक जीवन नहीं है.
How many of you are initiated?
आप में से कितने भक्त दीक्षित हैं?
And those of you who are initiated, especially those who are initiated householders, they have a greater burden than those who are not initiated.
तो आप में से जो गृहस्थ जिनकी दीक्षा हो गई है उन पर यह बहुत बड़ा भार है और उन भक्तों की उन लोगों की तुलना में जो अभी दीक्षित नहीं है, एक गृहस्थ भक्त जो दीक्षित है.
We have bona fide spiritual masters who are divine representatives of Srila Prabhupada.
हमारी परंपरा में हमारे पास कई शुद्ध भक्त हैं जो कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को यथारूप पालन कर रहे हैं.
Of course, their students or disciples are also their own disciples. They're not disciples by jumping over. They are disciples of their Diksha Guru and they're disciples of Srila Prabhupada also, according to GBC policy. That everyone in ISKCON are Siksha disciples of Srila Prabhupada.
तो इस्कॉन की नियमों के अनुसार हर इस्कॉन का भक्त श्रील प्रभुपाद का एक शिक्षा शिष्य है. श्रील प्रभुपाद उनके शिक्षा गुरु हैं और वे एक प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनसे दीक्षा होकर के वे उनके दीक्षित शिष्य भी हैं.
The word shishya means instruction.
शिक्षा का अर्थ है आदेश.
So the word shiksha guru and shishya, the two words are almost the same.
तो शिक्षा गुरु और शिक्षा शिष्य सेम है, समान है.
So the policy of the top leadership of ISKCON is that all the devotees in ISKCON are Siksha disciples of Prabhupada. That means by instruction. Prabhupada is founder Acharya. His instructions for all time for all devotees in ISKCON, and there are many outside of ISKCON also who are trying to follow to some degree Prabhupada's instructions.
तो ये इस्कॉन के जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वे उनका ये निर्देश है कि हम सभी जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का उनके आदेश का पालन कर रहे हैं सभी प्रभुपाद के शिक्षा शिष्य हैं.
So everyone here is more fortunate than such a big, big personality as Shukracharya.
तो इसलिए यहाँ पर उपस्थित हर भक्त इन बड़े बड़े विद्वान जैसे शुक्राचार्य से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं.
You said you have an answer. What's your answer? Louder.
Louder.
Yes. We have connection with Guru Parampara, bonafide spiritual master. That's Srila Prabhupada. We have all connection with Prabhupada.
तो महाराज ने पूछा कि आपका क्या उत्तर है कि क्यों हम ज्यादा भाग्यशाली हैं शुक्राचार्य से. तो परमवीर प्रभु ने उत्तर दिया क्योंकि हम एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं इसलिए हम शुक्राचार्य से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं और प्रमाणिक गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद से आ रही है. अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं.
1977, how will the initiating go on after his departure? As he was not in good health, and it was clear that that he would not be with us for another, say, 20 years or so. So the disciples were asking, how will the movement go on? How will the initiation process go on after your departure?
तो जब प्रभुपाद की सेहत 1977 में बहुत खराब होने लगी तो प्रभुपाद के जो जो प्रमुख शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपके जाने के बाद ये दीक्षा की प्रणाली कैसे चलती रहेगी किस प्रकार रहेगी.
The conclusion is that his disciples would initiate disciples also and carry on the parampara.
तो निष्कर्ष यह है कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य शिष्य स्वीकार कर अन्य शिष्य स्वीकार करेंगे और इस प्रकार गुरु परंपरा चलती रहेगी.
So he was asked whose disciples they will be.
तो फिर उन्होंने शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा कि अच्छा लेकिन वे शिष्य किनके कहलाएंगे.
Prabhupada replied, disciple of disciple. In other words, the grand disciples, which those of you who did not take direct initiation from Srila Prabhupada in the category of grand disciple.
तो जो प्रभुपाद से सीधे दीक्षित दीक्षा नहीं ले सके जो प्रभुपाद के शिष्यों से दीक्षित हैं वे प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल हैं.
So Prabhupada made his intent clear that those who continue the guru parampara, the newer devotees will be disciples of the disciples. He made it clear, but there was so much speculation over that. But the disciples of disciples, that's in that, you know, so-called appointment conversation.
तो प्रभुपाद ने बड़ा ही अच्छे से स्पष्टीकरण किया था कि जो मेरे जाने के बाद जो शिष्य होंगे इस्कॉन में वे मेरे शिष्यों के शिष्य होंगे और लेकिन कुछ लोग इसका जबरदस्ती कुछ मनगढ़ंत मतलब निकाल रहे
हैं.
तो प्रभुपाद ने उसी वार्तालाप में यह भी स्पष्टीकरण दिया कि वे किस प्रकार के शिष्य गुरु होंगे.
Srila Prabhupada said, regular guru.
तो प्रभुपाद ने कहा regular guru.
Regular guru is distinct from founder acharya.
तो regular guru जो होते हैं वे एक founder acharya संस्थापक आचार्य से भिन्न होते हैं.
Not in the same league.
वे उसी पर उसी लीग में नहीं होते हैं.
One says you could say regular guru is junior to founder acharya.
तो जो रेगुलर गुरु होते हैं साधारण जो गुरु होते हैं वे एक संस्थापक आचार्य से नीचे होते हैं.
But as long as they are preserving and teaching the same as founder acharya, then it is just as good.
तो जब तक वे जो संस्थापक आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं को उनके संदेश की रक्षा करते हैं तब तक वे परंपरा में हैं.
So everyone sitting here is more fortunate than Shukracharya because you are all followers of Srila Prabhupada.
तो क्योंकि आप सभी लोग श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं इसलिए आप सभी शुक्राचार्य से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं.
And he, Shukracharya, is not a follower of a general resident of Braj.
तो शुक्राचार्य किसी व्रजवासी जो नित्य व्रज में वास करते हैं उनके 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 फॉलोअर नहीं हैं इसलिए वे शुद्ध भक्त नहीं हैं।
Even if you all sitting here are on a slow train, local train, not the Rajdhani, still you'll get back to Godhead before Shukracharya.
हालांकि आप सभी शुक्राचार्य की तुलना में एक स्लो ट्रेन में हैं, राजधानी में नहीं हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से भगवत धाम पहुंचेंगे।
Because you're on the everyone who are followers of Srila Prabhupada, even if somehow or other you have to spend some more births in this material world, but still, believe it or not, you're on the fast track.
तो हालांकि हो सकता है आपको इस भौतिक जगत में ज्यादा समय बिताना पड़े, लेकिन आप एक सही ट्रैक पर हैं जो आपको भगवत धाम ले जाएगा।
That is, of course, if you don't get derailed.
और यह तभी संभव है जब आप इस पटरी से ना उतरें।
Derailed means that if you have too many material desires, then but you are devotee also, not non-devotee, but devotee. So such devotees are called sakama.
तो पटरी से उतरने का अर्थ है कि हो सकता है भक्त तो हैं लेकिन आपकी कई सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो आप सकाम कहलाते हैं।
Kama doesn't just mean lust. Kama means desire also.
काम का अर्थ सिर्फ काम ही नहीं है, उसका अर्थ इच्छा से भी लिया जाता है।
So sakama means who's full of material desires, all kinds of desires, not just a desire for pure devotional service. That is sakama.
तो सकाम का अर्थ है सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, सिर्फ शुद्ध भक्ति की इच्छा न होना, यह सकाम है।
But Shastra says whether you are full of material desires or whether you have no material desires at all, the opposite of sakama is akama.
तो शास्त्र कहते हैं कि भले आप में बहुत सारी इच्छाएं हो या कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना होना अकाम कहलाता है।
Whether you are full of material desires or whether you have no material desires at all, akama. In either case, just worship the Supreme Personality of Godhead.
तो शास्त्र कहते हैं कि भले ही आप अकाम हैं, अर्थात बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, या फिर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, आप अकाम हैं, तो भी आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए।
So we are all receiving this from Srila Prabhupada.
और यह संदेश हमें श्रील प्रभुपाद से प्राप्त हो रहा है,
he is an eternal resident of Braj.
जो कि शाश्वत रूप से व्रज के वासी हैं।
He was asked by Krishna himself to descend into this world.
उन्हें उनसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभुपाद से पूछा कि आप इस भौतिक जगत में जाइए।
Prabhupada told at least two disciples.
प्रभुपाद ने यह बात कम से कम दो भक्तों को, दो शिष्यों को बताई।
I was in Goloka Vrindavan with Krishna.
प्रभुपाद ने बताया कि मैं गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ था और मैं इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहता था। भगवान ने कहा कि आप उस भौतिक जगत में जाइए, तो प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जाना चाहता।
Spiritual world, they're full of knowledge automatically. Their body is Sachit Ananda Vigraha. They're full of knowledge automatically. They don't have to study books.
तो प्रभुपाद जो कि आध्यात्मिक जगत से हैं, गोलोक से हैं, तो गोलोक में सभी लोग सच्चिदानंद होते हैं, सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, और उन्हें स्वाभाविक रूप से ही सभी कुछ ज्ञान होता है।
So normally they don't think about the material world. They're absorbed in their nitya rasa or their eternal rasa with Krishna.
तो वे जो व्रजवासी हैं, जो गोलोक में हैं, वे इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहते, वे शाश्वत रूप से अपने रस से भगवान श्री कृष्ण से के साथ आदान प्रदान करते हैं।
If the subject comes up, they know what the material world is.
तो वे भौतिक जगत को नहीं आना चाहते हैं।
So when Krishna asked him to go to material world, Prabhupada said, "But I don't want to go."
तो जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि आप भौतिक जगत जाएं, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं भौतिक जगत नहीं जाना चाहता।
But Krishna told him, "But you have to go because I want you to write these books."
तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद से कहा, लेकिन आपको जाना होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन पुस्तकों को लिखें।
Sri Prabhupada ki
jai.
So Prabhupada descended to this material world on the request of Krishna or on the order of Krishna in order to write these Bhaktivedanta purports.
तो इसलिए प्रभुपाद इस भौतिक जगत में सिर्फ भगवान की आज्ञा से, भगवान की रिक्वेस्ट पर ही यहाँ आए इन पुस्तकों को लिखने के लिए।
So we're under the guidance of Sri Prabhupada. Whether you have taken diksha direct for him, or whether you are grand disciple, or whether you're aspiring, or whether you're not initiated, but everyone sitting here today is a disciple of Srila Prabhupada by siksha, instruction.
तो भले ही आपने प्रभुपाद से सीधे दीक्षा ली हो या आप प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल हो या आप दीक्षित होना चाहते हो, हम सभी प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद के शिक्षा शिष्य हैं।
But Shukracharya is not.
और शुक्राचार्य ऐसे नहीं हैं।
Therefore, he's less fortunate.
इसीलिए वे बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं।
See, maybe living very long time. And remaining in the universe on the higher planet somewhere.
भले ही शुक्राचार्य बहुत लंबे समय के लिए जीवन यापन कर रहे हों या किसी उच्च लोक में, ब्रह्मांड के किसी उच्च लोक में स्थित हों।
But if you're on the slow local train, everyone here will have gone back to home, back to Godhead, to Goloka Vrindavan.
लेकिन भले ही आप किसी एक स्लो ट्रेन में हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन जाएंगे।
He came down to catch all of us.
तो यही प्रभुपाद हैं। वे इस भौतिक जगत में आए हम सभी को पकड़ने के लिए।
And to write these books.
और इन पुस्तकों को लिखने के लिए।
So on the other hand, Shukracharya, he might stay millions more years in the universe, while all of you go back to Godhead, even if you have to spend another six births. But I don't think anybody here is going to have to spend another six births in the material world. Because even if you don't make it in this lifetime, that in next life you will be in a good situation for spiritual development.
तो भले ही शुक्राचार्य लाखों सालों तक जीवन यापन करें, ब्रह्मांड में रहें, लेकिन आप इस भौतिक जगत में होते हुए भी, क्योंकि प्रभुपाद के मार्ग निर्देशन में हैं, इसलिए आप बहुत जल्द ही भगवत धाम पहुंचेंगे। हो सकता है अगर जो लोग इस जन्म में पूरा ना कर सके, तो उन्हें अगले जन्म में भी बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी कि वे भक्ति और आध्यात्मिक जीवन को अपना सकें।
One thing is for sure, because just because you're sitting in this class today, hearing the message of Srimad Bhagavatam, and because you're chanting Hare Krishna, and many of you having bead bags, so therefore, it's sure it's certain that your next birth will be as a devotee. And it's not very likely that you'll have an expert as a dog. Not so likely. It could happen, but you know, if you slip up really bad, but still, the chances are that you'll come back in human form of life and pick up where you left off, because that's what Krishna says in the Bhagavad Gita.
तो क्योंकि आप सभी यहाँ श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुन रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आप में से ज्यादा भक्तों के पास जपमाला भी है, तो आप सभी निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, और जो लोग इस जन्म में नहीं सक्सेसफुल होंगे, वे निश्चित रूप से अगले जन्म में उन्हें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी कि वे एक और शुद्ध भक्ति को अपना सकें।
Of course, these temple dogs are not ordinary souls.
और ये यहाँ मंदिर के आसपास जो कुत्ते हैं, वे भी कोई साधारण जीव नहीं है।
Once the one of the temple guards was harassing the dog, temple dog.
एक बार एक जो गार्ड है मंदिर के, वे एक मंदिर के जो आसपास रहने वाले कुत्ते हैं, उनको परेशान कर रहे थे।
I told him, this temple dog is senior to you.
तो मैंने उस गार्ड से कहा, यह जो मंदिर के आसपास ये कुत्ता है, ये आपसे भी वरिष्ठ है।
Dog has been associated with devotees and with a favorable attitude longer than you have.
तो जो ये कुत्ता है, ये favorable अर्थात बहुत ही प्रेम में आदान प्रदान करता है भक्तों के साथ में।
So how dare you drive away the dog?
तो ये अनुकूल रूप से कर रहा है भक्तों का संग, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं।
Very soon you'll be gone, but the dog won't. Yes, it's true. We go through guards like anything, you know. A guard doesn't last here longer than a year at the most, you know, in most cases.
तो महाराज ने उससे कहा कि गार्ड यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, हो सकता है आपको भक्तों का संग छूट जाए, लेकिन यह भक्तों के साथ काफी समय से है और आगे भी रहेगा।
But the temple dogs, they last a lifetime, you know, whatever that may be, and then, you know, they some compassion devotee gives some mangalarti sweet rice and this and that. So their future is guaranteed human form of life in association with devotees.
तो क्योंकि कुछ दयालु भक्त उन कुत्तों को मंगल आरती की खीर भी खिलाते रहते हैं, तो ये कुत्ते निश्चित रूप से अगले जन्म में भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, एक भक्त का जीवन अपनाएंगे। तो ये जो मंदिर के बाहर रहने वाले कुत्ते हैं, ये शुक्राचार्य से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं।
Because these temple dogs have a link with Srila Prabhupada and Shukracharya doesn't. Oh, he may know about Prabhupada, but he's certainly not going to surrender. Prabhupada certainly not. It's not very likely, not at all, because he's so full of material desires, sakama, that the probability that he will surrender one day to Srila Prabhupada's teachings, well, don't hold your breath.
तो शुक्राचार्य क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान है, शास्त्रों में निपुण है, इसलिए वे श्रील प्रभुपाद की शरणागति नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि ये कुत्ते जो हैं ये प्रभुपाद की शरणागति में हैं, तो इसलिए ज्यादा सौभाग्यशाली हैं।
So, the Bhagavad says there's nothing more sinful than untruthfulness.
तो भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है।
Because of this, Mother Earth once said, I can bear any heavy thing except a person who is a liar.
इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे व्यक्ति को नहीं।
So we'll read from Srila Prabhupada's purport.
तो हम तात्पर्य से पढ़ेंगे।
On the surface of the earth there are many great mountains and oceans that are very heavy, and Mother Earth has no difficulty carrying them.
पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं, जो अत्यंत भारी हैं, और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती।
But she feels very much overburdened when she carries even one person who is a liar.
किंतु वह अपने को तब अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है जब उसे एक भी झूठे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है।
It is said that in Kali Yuga, lying is a common affair.
कहा जाता है कि कलयुग में असत्य भाषण एक सामान्य बात है।
Vayaiva vyavaharike from the Bhagavatam 12th canto.
Mayaiva vyavaharike Bhagavatam 12th skand 2nd adhyay 3rd shlok.
Even in the most common dealings, people are accustomed to speaking so many lies.
यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने के आदि होते हैं।
No one is free from the sinful reactions of speaking lies.
कोई भी झूठ बोलने के पाप फलों से मुक्त नहीं है।
Under the circumstances, one can just imagine how this has overburdened the earth and indeed the entire universe.
ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी कितनी बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या? सारा ब्रह्मांड बोझिल है।
Just like in the court system, there's so much lying.
जैसा कि न्यायालयों में होता है कि वहां पर कितना झूठ बोला जाता है।
Somebody is a very a ghastly murderer.
कोई मृत्यु करने वाले के विरुद्ध कितना झूठ बोला जाता है।
He pays big bucks and hires a high-priced advocate.
वह जो जिसने हत्या की है, वो हत्यारा बहुत सारे पैसे किसी को देता है कि वो झूठ बोले।
Advocate knows that he committed the crime.
हर कोई जानता है कि उसने अपराध किया है,
But he's a hired gun.
लेकिन वह फिर भी कुछ पैसे दे करके और छूटना चाहता है।
He's supposed to defend his client.
और एक वकील होता है जो कि अपने उस हत्यारे को बचाना चाहता है।
So he appears before the judge, Your Honor, my client has been falsely accused.
तो वहां पर वो वकील जो हत्यारे का वकील है वो बोलता है कि हे महाशय, हे महोदय, मेरे जो ये व्यक्ति हैं इन्हें झूठा आरोप लगाया जा रहा है इन पर।
There is no evidence whatsoever that my client ever committed this murder. He has been completely falsely accused.
तो वह वकील कहता है कि यह झूठा आरोप है, इसके कोई साक्षी या कोई साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने कभी कोई हत्या की हो।
But he knows that the man, he privately knows the man committed the murder, a ghastly murder. He privately knows that, but he just simply lies. In court, he lies.
वह वकील जानता है कि उस व्यक्ति ने हत्या की है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने झूठ बोलता है।
I suppose it must be similar in India. In America, the oath that you have to say is, I swear that I will tell the truth, the solemn truth, and nothing but the truth. So help me God. That's what they say, you know. And you know, it used to be everybody put their hand on the Bible in America, but nowadays, I guess they have a for a Hindu, maybe they put their hand on the Bhagavad Gita. I don't know.
तो अमेरिका में न्यायालय में जो जो भी व्यक्ति होता है
in
उसे
India, they use Bhagavad Gita, is it? For Hindus, they use Bhagavad Gita. For Muslims, they would use the Quran.
तो जो भी व्यक्ति न्यायालय में आता है, जो कटघरे में होता है, उसे यह शपथ लेनी होती है। तो अमेरिका में वे बाइबल के ऊपर हाथ रख करके यह शपथ लेते हैं कि मैं पूरा सच बोलूंगा और हे भगवान मेरी मदद कीजिए। और भारत में हिंदुओं को भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेनी होती है और मुसलमानों को कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेनी होती है।
बस रूपा सर लॉयर मींस लायर।
श्रील प्रभुपाद ने कहा लॉयर वकील का अर्थ है लायर अर्थात झूठा।
बक्सी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेड द ईथर इज कंटामिनेटेड बिकॉज़ ऑफ द लाइंग इन द कोर्टरूम्स।
तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो ईथर है आकाश जो है वो जो न्यायालय में जो झूठ बोला जाता है उसकी वजह से प्रदूषित हो गया है।
इन द भगवद गीता कृष्ण सेज आई एम द साउंड इन ईथर।
तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आकाश में ध्वनि मैं हूं।
So ether can be roughly compared to a pipe that's carrying water.
तो आकाश की तुलना की जा सकती है एक पाइप से जिसमें कि जो पानी को ले जा रहा है।
In other words, sound is carried within the vehicle of ether.
तो जो इसीलिए जो ध्वनि है वह आकाश के मार्ग से होती हुई जाती है।
If you have a notebook, you should write that down.
अगर आपके पास पुस्तक है तो आप यह लिखें।
Ether is like a medium. Another example would be artists who are using making their own colors.
तो आकाश जो है वो एक माध्यम है और दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है कि जो कलाकार होता है वो जब रंग बना रहा होता है।
Many times an artist may take a clear colored poly paint base.
कई बार कलाकार कुछ पेंट के लिए बेस लेता है उस रंग चढ़ाने से पहले।
And add their own combinations of colored dried paint pigment.
तो वो
pigment means colors.
वह नए रंग बनाने के लिए कुछ सूखे हुए रंग लेकर के ब्रश से और फिर उससे एक नया रंग बनाने का प्रयास करता है।
That the sound is carried in the ether. You see, do you follow?
तो जो जब रंग बनाने से पहले उसे एक बेस बनाना होता है जिसमें वो रंगों का मिश्रण करता है, तो वह जो बेस है, जो बेस कलर है, उसे हम आकाश से तुलना कर सकते हैं, जो कि ध्वनि को लेके जाती है।
Says I am the sound in ether. So ether is carrying the sound.
तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि आकाश में ध्वनि मैं हूं अर्थात आकाश ध्वनि को लेकर के जाता है।
This is real science.
और यह एक वास्तविक विज्ञान है।
And gradually now, some of you younger people, the scientists in your lifetime are going to figure out these things.
तो आप में से जो नवयुवक हैं वे अपने जीवन में इन चीजों को समझेंगे।
Now the scientists have discovered, they've recorded. They have recorded the sound of the sun planet.
तो जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सूर्य की ध्वनि को रिकॉर्ड किया है, सूर्य से आने वाली ध्वनि को।
So how many of you know what is the sound of the sun planet?
तो आप में से कौन कौन जानते हैं सूर्य की आवाज क्या है?
Now these are scientists. We're talking about atheistic scientists now. We're not talking about Vaishnavas.
तो हम यह नास्तिकों का जो विज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं, वैष्णवों का विज्ञान यह नहीं है.
And they were not talking about Hindus either.
और ना ही हम हिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं.
We're talking about secular scientists.
हम जो नास्तिक वैज्ञानिक हैं उनकी बात कर रहे हैं.
With their super recording devices for recording sounds in outer space.
तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जिनसे कि वे जो आकाश में जो ध्वनि तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं.
So they discovered that the sound vibration emanating from the sun is Om. They recorded it.
उन्होंने यह रिकॉर्ड किया है कि आकाश से जो ध्वनि आ रही है, जो सूर्य से आने वाली ध्वनि है, उसकी आवाज ओम के उच्चारण जैसी है.
So the whole world is going to be looking at India. Can you please tell us your secrets? We find out that you have some secrets in your ancient Vedas. Can you tell us about it? So we have to be ready for that. We have to be ready for that. If we can't answer the questions, what is the use?
तो पूरा जो जगत है वो भारत की ओर दृष्टि डालेगा कि क्या आपके पास इसका कुछ स्पष्टीकरण है आपके वेदों में, आपके जो शास्त्र हैं, कि यह आवाज क्या है. तो इसके लिए हमें तैयार रहना है कि हम उन्हें उत्तर दे सकें.
We have to be able to tell them, yes, God himself is known as Surya.
तो हमें उन्हें उत्तर देना होगा कि भगवान स्वयं सूर्य हैं.
कृष्ण सूर्य.
कृष्ण भगवान सूर्य हैं.
So he says that I am the sound in ether. Krishna says I am the sound in ether.
तो भगवान कहते हैं कि जो आकाश में जो ध्वनि है वो मैं हूँ.
I am a syllable ओम.
और भगवान कहते हैं मैं जो syllable, जो ओम शब्द है वो मैं हूँ.
So gradually they will be approaching Krishna through science.
और इस प्रकार वे धीरे धीरे विज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ेंगे.
And they will more and more become convinced. Not only is there God, but he has a name, and his name is Krishna, because Krishna says, I am the syllable Om in the Vedic mantras.
तो वे यह निश्चित रूप से जान जाएंगे कि भगवान है और वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि शास्त्रों में ओम मैं हूं.
So asadyat means untruthfulness or lying.
असत्य का अर्थ है झूठ बोलना.
As devotees, we also have to be careful because devotees are not always truthful with each other.
भक्त को भी बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई बार भक्त भी आपस में एक दूसरे के प्रति सत्यता नहीं बरतते हैं.
But here we see that Bhagavad says it's a great sin. Lying is a sin that disturbs the earth greatly.
और हमें यह ध्यान रखना है, जैसे शास्त्र में यहाँ कहा गया है कि असत्य एक पापमय कार्य है और जो कि पृथ्वी को परेशान करता है.
Prabhupada points out that there are many great mountains and oceans that are very heavy.
यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कई अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं.
Not only the mountains, but also the oceans.
न सिर्फ पर्वत बल्कि सागर भी.
Millions of crores of liters, millions, hundreds of millions of crores of liters ocean. Nobody can count how much the ocean. Volume of water is in the ocean. Nobody can count.
तो कोई भी समुद्र जो जिसमें लाखों करोड़ों अरबों पानी है उसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता है.
Prabhupada points out Mother Earth has no difficulty in carrying all this weight.
और प्रभुपाद बताते हैं कि इन सभी भारी चीजों को भी धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती.
But Mother Earth feels burdened by the weight of even one liar.
लेकिन माता पृथ्वी को बहुत वजन लगता है अगर कोई झूठ बोलता है तो.
And now it is such a common thing.
और जो कि झूठ बोलना एक बहुत ही सामान्य चीज हो गई है.
Such a great sin.
और यह बहुत बड़ा पाप है.
So this is one of the contributing factors to tsunamis.
और सुनामी के आने के पीछे यह बहुत बड़ा भागीदार है झूठ बोलना.
Earthquakes, drought, the reactions are coming.
तो जो अकाल पड़ता है, जो अर्थ भूकंप आते हैं, इन सब के पीछे झूठ बोलना भी एक कारण है.
Interestingly, it seems that these reactions are coming worse to South India than to North India. This is very interesting.
और एक रुचिकर बात है कि ये सब जो आपदाएं हैं, ये दक्षिण भारत में ज्यादा होती हैं, ना कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ये सब ज्यादा होती हैं.
They keep getting hit by cyclones down there.
अब वहाँ पर कई बार बवंडर भी आने लगे हैं.
And also, drought now in South India is common.
और जो अकाल पड़ा है, वह भी बहुत ही सामान्य हो गया है दक्षिण भारत में.
But South India is meant to be pure Brahminical culture.
South, जो दक्षिण भारत है, वो वैसे तो बहुत ही शुद्ध वैष्णव वहाँ होना चाहिए संस्कृति.
Sri Vaishnavas, when rightly situated, are very pure.
जो श्री वैष्णव हैं, वे बहुत ही शुद्ध हैं.
Of course, now unfortunately they're deviating like anything.
लेकिन अब वे भी दुर्भाग्यवश विमुख हो गए, विचलित हो रहे हैं.
And they've lost all their potency.
और इसीलिए उन्होंने अपनी शक्तियां खो दी हैं.
Neither are they preachers of Vedic culture.
और ना ही वहां कोई वैदिक संस्कृति के प्रचारक हैं.
So we have to preach vigorously because the religious principles are being completely forsaken.
और इसलिए हमें बहुत ही शक्ति के साथ में प्रचार करना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की जो संस्कृति है वो गिर रही है.
The main reason that these disasters are hitting South India is because it's supposed to be the land of pure Dharma, but now the sin is increasing like anything down there.
एक कारण जो इन आपदाओं के आने का है दक्षिण भारत में, वह यह है कि वो जो भूमि है वो एक शुद्ध धर्म की भूमि है, लेकिन अब वहाँ पाप में कार्य बढ़ रहे हैं.
So many millions, or if you want to be conservative, you can say hundreds of thousands, but it's in the millions, are becoming converted to Christians now in South India.
दक्षिण भारत में लाखों लोग अब क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहे हैं.
When you drive about in South India, you'll see hundreds and hundreds of Christian churches.
अगर आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आप देखेंगे सैकड़ों गिरजाघर वहां पर हैं.
Very few temples in comparison, except the ancient ones.
बहुत ही कम मंदिर हैं, जो कि सिर्फ पुराने मंदिर ही हैं.
But for the record, we have nothing against Christians. We have nothing against Christians.
हम लोग ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं हैं.
But they have to follow their own teaching.
लेकिन उन्हें अपने धर्म की सही से शिक्षाओं का पालन करना चाहिए.
Prabhupada's point whenever he met with a Christian.
यही प्रश्न प्रभुपाद हर ईसाई व्यक्ति से पूछते थे.
Your scripture says, "Thou shalt not kill." Why are you killing innocent animals? And Prabhupada would not discuss anything else.
प्रभुपाद कुछ और चर्चा नहीं करते थे. प्रभुपाद सीधे कहते थे, आपके शास्त्र कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर आप इतनी हत्याएं क्यों कर रहे हैं?
And in the past 10 years, there are hundreds of thousands more Muslims than there used to be in South India.
और दक्षिण भारत में मुसलमानों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है, हजारों हो गए हैं.
We got nothing against Muslims either.
हम ना ही मुसलमानों के विरुद्ध हैं.
If they worship God sincerely and chant the holy names of God and execute Yuga Dharma in that way, we have no problem with that.
हमें कोई समस्या नहीं है अगर वे अपने शास्त्रों का सही प्रकार से पालन करें, अपने धर्म को सही से पालन करें.
But the butchering of animals, that is a problem. It ruins the Christianity, so-called Christianity, and it ruins the Muslim religion. Otherwise, there's nothing wrong. But the animal slaughter causes the people in turn to be violent also. You see, it becomes there. You butcher animals, then you also become violent.
और जो मासूम जीव जो पशु हैं उनकी हत्या करना, इसी वजह से मुस्लिम जो धर्म है या जो क्रिश्चियनिटी है वो धर्म खराब हो गए हैं. और ऐसा करने से जीव हत्या कर पशुओं की हत्या करने से आप भी वैसे ही हत्यारे हो जाते हैं.
So this movement has been established by Srila Prabhupada to create pure dharma on this planet. And we have to take it. But if devotees themselves are not truthful, then everything, then we will also suffer the reactions, the sinful reactions. It should be clear from this verse and from the purport that if devotees also are not truthful, there will certainly be sinful reactions in our own community.
तो प्रभुपाद ने इस आंदोलन में शुद्ध धर्म की स्थापना की है, इसलिए भक्तों को आपस में सत्यता का व्यवहार करना चाहिए, और अगर भक्त आपस में सत्य नहीं बोलेंगे तो यह बहुत पाप में कार्य होगा, जिसके लिए उन्हें परिणाम मिलेंगे, जिसके लिए उन्हें रिएक्शंस मिलेंगे।
So we'll stop there. Any questions or comments?
हम यहीं पर विराम देंगे, किन्हीं के कोई प्रश्न या टिप्पणी?
Yes.
Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for the wonderful lecture. My question is this, we've been grown like this, we have a habit to lie now. So how to give up this habit of lying?
Before becoming a devotee, in other words, habituated to speaking lies.
तो प्रभुजी ने प्रश्न पूछा है कि महाराज हमारा जो हमें जो पालन पोषण होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो भक्ति में आने से पूर्व हमें आदत हो जाती है झूठ बोलने की तो अब उस आदत को कैसे छोड़ें?
The answer is that you have to reinvent yourself in Krishna consciousness.
तो इसका उत्तर है कि आपको कृष्ण भावनामृत में अपने आप को पुनः अच्छे से लगाना होगा।
All of the world, people coming from all kinds of deviated cultures are taking up Krishna consciousness. All over the world.
तो पूरे संसार में जो भक्ति से विमुख व्यक्ति हैं, जो धर्म से विमुख हैं, वे लोग भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे हैं।
Meat eaters, fornicators.
मांसाहार करने वाले, व्यभिचरण करने वाले,
सिगरेट स्मोकर्स, वाइन ड्रिंकर्स,
धूम्रपान करने वाले, नशा पान करने वाले, शराब पीने वाले,
By the thousands are taking up Krishna consciousness.
ऐसे ही हजारों लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे हैं
They leave the old, sinful habits behind.
और उन्होंने अपने पाप में आदतों को पीछे छोड़ दिया है
So similarly, we have to leave these old sinful habits behind, lying also. We have to leave it behind. Give it up, that's all. And if you have any problem, depend on Krishna.
इसीलिए आप भी इस पाप में जीवन अर्थात झूठ बोलने की आदत को छोड़ दीजिए और इसे त्याग दीजिए और अगर आपको कोई समस्या होती है तो भगवान की शरण लीजिए।
Next verse structure says vacha vega manasa kroda vega. We have to get control of the tongue.
तो उपदेशामृत में प्रथम श्लोक में यह बताया गया है वाचो वेगम अर्थात हमें जो बोलने का वेग है उसे नियंत्रित करना चाहिए
You want to say some lie, but you have to hear it in your mind first before it reaches your tongue, and then you have to stop it.
आप जब आपको झूठ बोलने की इच्छा हो तो आपको पहले उसे जबान जीभ पर लाने से पहले अपने मन में ही सोचना होगा और उसे वहीं त्याग दीजिए
All over the world there are live talk shows, radio.
और रेडियो पर पूरे संसार में लाइव टॉक शो होते हैं
and so people call in and they can talk on the radio.
और लोग अपने मोबाइल से फोन से कॉल करते हैं उसी वक्त और वो शो में बात कर सकते हैं
But by the, between when people call in and before it goes on the air there's something like a, at least a 3-4 second time gap
और जैसे ही व्यक्ति कोई कॉल लगाते हैं घर से तो उस शो में बात पहुंचने से पहले 3-4 सेकंड का अंतराल होता है
And either the host of the radio show or somebody in a booth they have got a red button and if say the person calling in starts speaking obscenities or says something discussing that they don't want to broadcast on the radio they swiftly push a red button it doesn't make it on the air
to radio station par ek vyakti baitha hota hai jo ki us call ko receive kar raha hota hai to agar koi bolne wala vyakti kuch galat bolne lagta hai to
वो व्यक्ति उस वहीं पर उसे रोक देता है रेड बटन दबाकर.
Create your own red button.
तो इसलिए आप भी अपना वह रेड बटन क्रिएट कीजिए, बनाइए.
You hear what's going through your mind. You want to say it, push the red button.
और आप अपने मन में सुनिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और अगर वो गलत है तो उसे रोक दीजिए.
Don't broadcast it. That's all.
उसे जवाब तक मत आने दीजिए.
Go on chanting Hare Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Baba Bhakti Nibbapuram. The heart will become purified gradually. Read in the Shastra, read in Prabhupada's books. Attend daily kirtans, Guru Puja, Mangalarti. You follow sadhana bhakti. Slowly, slowly, your heart will become purified.
आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, चेतो दर्पण मार्जनम, और इससे चित्त का जो हमारे मन है उसकी सफाई होगी. आप नियमित रूप से आरती अटेंड कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और इससे आपका मन शुद्ध होगा. हम यहीं पर विराम देंगे.
ग्रंथ श्रीमद् भागवत नाम की जय. जगद्गुरु श्री बाबा की जय. श्री राधिकरमा कृष्ण बलराम की जय. नित्य गोपी मनंदी हरि हरि बोलो.
परम पूजनीय भक्ति मधुर गोस्वामी.